جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعمالكم. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جسموں کو اور صورتوں کو نہیں دیکھتا کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے جسموں اور صورتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی کہ تمہارے دلوں کی اور تمہارے اعمال کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہم نے دوبارہ سے کیوں پڑھی ہے آج؟ کیونکہ ایک تو یہ حدیث جو ہے وہ اس چیپٹر کے بالکل شروع میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کری تھی. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے بہت ہی یعنی اس ٹاپک سے مناسبت رکھنے والی حدیث ہے جبھی اس کو یہاں پہ نقل کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم نے کیوں نقل کری آپ کے سامنے دوبارہ؟ شروع میں تو پڑھ لی تھی لیکن دوبارہ کیوں نقل کری؟ کیونکہ ریمائنڈ کروانا، یاد دہانی کروانا اس بات کی کہ ہمارے دین میں اور ہمارے پروردگار کے سامنے ہمارے دلوں کی اصل اہمیت ہے، دلوں کی اصل اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو دل کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ دل کے اندر جذبات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جذبات اور کیفیات دل کے اندر ہوتی ہیں انسان کے. صحیح ہے، اور یعنی جیسے محبت کی کا جذبہ ہے، اور خوف کا جذبہ ہے، اور کسی کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، اور جو ہے وہ یعنی اس قسم کے جو جذبات ہوتے ہیں، نفرت کا جذبہ ہے. تو یہ سب کہاں پر ہوتے ہیں؟ انسان کے دل میں ہوتے ہیں. تو دل کی طرف دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے جذبات کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھے جذبات ہیں یا برے جذبات ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا وہ اچھے ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا وہ برے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اچھے اور برے کی تعریف کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت اچھے اور برے کی تعریف کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو دل کو دیکھنے کا مطلب کہ دل کے جذبات کو دیکھنا کہ وہ اچھے جذبات ہیں یا وہ برے جذبات ہیں. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جذبات کا ایک تعلق انسان کے سوچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سوچ، آپ کیا چیز سوچ رہے ہیں، یعنی کس نیت سے آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کس نیت سے، کیا سوچ آپ کے ذہن میں، اسی کو نیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ قبلہ رخ ہو کر کے کھڑی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہو کر کے کھڑی ہو گئی ہیں، کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ کیا نماز پڑھنے کی نیت تھی، یا بس ایسے ہی کھڑی ہو گئی ہیں، کہیں دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی ہیں؟ اگر نماز پڑھنے کی نیت تھی تب جو ہے نا وہ آپ جو عمل کر رہی ہوں گی وہ نماز کہلائے گا. اگر آپ بس ایسے ہی کھڑے ہو کر کے ایکسرسائز کرنے کی نیت سے کھڑی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ایکسرسائز کرنے کے لیے بھی ہاتھوں کی ایکسرسائز کرنی تھی تو ایسے کر کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور پھر اس کے بعد ایسے کر کے باندھ لیے تو بھائی ہاتھوں کی ایکسرسائز ہو گئی. اس کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ آپ نے کمر کی ایکسرسائز کرنی تھی تو آپ جو ہے نا وہ جھک گئیں. ٹھیک ہے، تو یہ کمر کی ایکسرسائز ہو گئی بھائی. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ گھٹنوں کی ایکسرسائز کرنی تھی اور اپنے تھائز کی ایکسرسائز کرنی تھی. ٹھیک ہے، کہ تھائز کے اوپر میں ذرا لوڈ ڈالوں، ویٹ ڈالوں تاکہ میرے تھائز مضبوط ہو جائیں. تو آپ جو ہے نا وہ تھائز کے اوپر، تھائز سمجھتے ہیں نا، ران، رانوں کے اوپر ویٹ ڈالتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئیں. تو یہ آپ کی تھائز کی اور گھٹنوں کی ایکسرسائز ہو گئی. फिर उसके बाद जो है वो आपने थोड़ा और अपने कमर की मजीद एक्सरसाइज कर ली, पीठ की एक्सरसाइज कर ली, जमीन के ऊपर झुक गई, ठीक है ना। तो ये आपके जहन में क्या सोचें चल रही हैं, एक्सरसाइज की सोचें चल रही हैं, तो ये आपकी नमाज नहीं होगी, ये नमाज नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके जहन में ये सोच है कि नहीं, मैं तो अपने रब का हुक्म पूरा करने के लिए नमाज पढ़ रही हूं, या अपने रब को राजी करने के लिए नफल नमाज पढ़ रही हूं, हुक्म पूरा करने के लिए कौन सी नमाज होती है, फर्ज, और नफिल और राजी करने के लिए कौन सी नमाज होती है, यानी मजीद राजी करने के लिए नफिल नमाज, तो फिर ये नमाज बन जाएगी, वरना ये नमाज नहीं बनेगी। क्यों? सिर्फ आपके जहन की सोच की वजह से, सिर्फ आपके जहन की सोच की वजह से। सोच एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज हो गई, सोच नमाज की थी तो नमाज हो गई। तो असल चीज क्या हुई फिर? सोच हुई, ठीक है। तो सोच का भी ताल्लुक जो है ना वो दिल के साथ होता है। कहने का मकसद ये है कि दिल ही असल चीज है, दिल ही असल चीज है, और इसी के ऊपर हर चीज डिपेंड करती है, ठीक है। ये दिल जो है ये किसी जिस्म के टुकड़े का नाम नहीं है, ठीक है, यानी कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि यहाँ पे दिल से मुराद जो है वो रूह है इंसान की, ठीक है। तो बहरहाल ये किसी वजह से एक्चुअली इस वक्त के दिल में ये बात आई थी कि आपके सामने दिल की अहमियत को जो है ना वो दोबारा से बयान कर दिया जाए। वो वजह बयान करें नहीं, फिर वो यही क्लास होती रहेगी। पर चलो हम थोड़ा सा किताब भी पढ़ लेते हैं। तो किताब में हम थे, किताब सुलूक वल एहसान पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर अखलाक हमीदा और उनके हुसूल के तरीके, ठीक है, ये दूसरा हिस्सा था इस किताब का, अखलाक हमीदा और उनके हुसूल के तरीके। तो इनमें जो आखिरी चीज हमने पढ़ी थी वो पेज नंबर 143, जो मेरी मेरी जिल्द है उसके अंदर 143 पेज बनता है, अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसका तरीका, ये हमने पढ़ के मुकम्मल कर लिया था। आज हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि अल्लाह ताला के हुक्म पे राजी रहना और उसका तरीका, अल्लाह ताला के हुक्म पे राजी रहना और उसका तरीका। तो इसमें जो पहले हजरत ने लिखा है वो हम पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद थोड़ी सी उसके ऊपर फर्दर एक्सप्लेनेशन की जैसे जरूरत पड़ जाती है हम लोगों को तो वो करेंगे। तो हजरत फरमाते हैं कि जब मुसलमान को ये मालूम है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी होता है उसमें बंदे का फायदा और खैर है, तो फिर हर बात पर राजी रहना चाहिए और किसी किस्म का शिकवा शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसका तरीका यह है कि इस बात का ध्यान रहे कि अल्लाह ताला का जो भी फैसला होता है उसमें खैर होती है, ठीक है, अल्लाह ताला का जो भी फैसला होता है उसमें खैर होती है। तो अब इसको सुन करके आपसे अगर हम पूछें कि आपके जहन में क्या चीज आती है, कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, कि जो कुछ भी होता है उसी में खैर होती है, तो एक लफ्ज में अगर आप बयान करना चाहें या एक मुख्तसर जुमले में, तो आप क्या जवाब देंगी? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर, किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि जो भी अल्लाह ताला का फैसला होता है। अगर जरा दीनी इस्तेलाह में बोला जाए तो ये हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी अल्लाह का फैसला क्या क्या होता है? अल्लाह का फैसला तकदीर, ठीक है, जो अल्लाह ताला ने लिख दिया वही सही है, ठीक है। तो तकदीर से आपके जहन में क्या बात आती है? उर्दू जुबान में इसको आप क्या कहेंगी? नसीब, नसीब कहते हैं ना, ठीक है, कि भाई मेरे हिस्से में जो आया है वो मेरा मेरा नसीब है, वही मेरी तकदीर है, तो मुझे उसके ऊपर राजी और खुश रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ यही है? यहां पर सिर्फ तकदीर ही की बात हो रही है, से मुराद नसीब, इंसान का नसीब, ठीक है। यहां पर क्या सिर्फ इंसान के नसीब की बात हो रही है कि जो अल्लाह ताला ने नसीब में लिख दिया वही सही है और उसी पे हमें खुश रहना चाहिए, राजी रहना चाहिए, या कुछ और भी है इसके अंदर? इसके अंदर एक और भी चीज है जो कि नसीब का लफ्ज सुन करके समझ में नहीं आती, ठीक है, या जो कि नसीब के लफ्ज में दाखिल नहीं समझी जाती। एक और भी चीज है इसके अंदर, वो क्या है कि जो कि दरअसल टाइटल, टाइटल्स के अंदर वो लफ्ज हजरत ने इस्तेमाल किया, ठीक है, लेकिन जो अल्फाज मजीद लिखे तो उसमें थोड़ा सा नसीब वाला वाला यानी आ जाता है हुक्म ना। बिल्कुल सही फरमाया आपने, टाइटल के अंदर तो अल्लाह ताला ने वो हजरत थानवी अब्दुल्ला ने हुक्म का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो हुक्म के लफ्ज से हमारे जहन में कुछ और चीज आती है और नसीब के लफ्ज से हमारे जहन में कुछ और चीज आती है, ठीक है। हालांकि दोनों एक ही चीज है, असल में तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो हुक्म से मुराद क्या है, जो हमारे जहन में बात आती है वो ये कि जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए हैं, अल्लाह ताला ने जो चीजें हम पर फर्ज करी हैं वो हमारे फायदे के लिए हैं, उन्हीं में हमारी भलाई है, ठीक है। पांच नमाजें, बल्कि सबसे पहले तो ईमान, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाना, सबसे पहला फर्ज तो ईमान है, ठीक है। तो ईमान लाने में हमारी भलाई है, हमारा फायदा है। नफ्स कहता है, जो अंदर हमारा एक बैठा हुआ है ना नफ्स, ठीक है, जो कि अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है, नफ्स कहता है कि तुम अपनी मर्जी से क्यों नहीं काम करते हो, तुम अपनी अकल क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो, तुमने जो है वो किसी दूसरे शख्स की बात क्यों मानी, तुमने किसी दूसरे शख्स के हाथों के ऊपर बैत क्यों करी, तुमने किसी दूसरे शख्स के फैसले को अपना फैसला मानना ये क्यों किया तुमने, क्या तुम्हारे पास अपनी अकल नहीं है, तुम खुद अपनी अकल से फैसला करो। तुम्हें भी अल्लाह ताला ने दो आंखें दी हैं, तुम्हें भी दो कान दिए हैं, तुम्हें भी जो है वो हाथ पैर दिए हैं और तुम्हें भी दिमाग दिया है, तो भाई किसी दूसरे की बात मानने की क्या जरूरत है। ये कौन कहता है, ये नफ्स कहता है, ठीक है, और पीछे से शैतान उसको ये वाला आइडिया देता है। तो नफ्स और शैतान ये वाली बात कहते हैं, अपनी अकल के मुताबिक काम करो जो करना है, ठीक है। जबकि ईमान क्या है, ईमान ये है कि जो अल्लाह के नबी ने आकर के बताया है ना वो करो, उसको मानो, और जिससे उन्होंने मना कर दिया है उससे रुक जाओ, ठीक है। तुम्हारी अकल में बात आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह के नबी की बात माननी होगी। अपने अकल को, अपनी अकल को जो है वो या तो साइड पे रख दो या अकल को जो है वो उसके ताबे बनाओ कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वही सही है, वही खैर है, ठीक है। तो ईमान लाना का मतलब क्या, अल्लाह के नबी की बात को फौकियत देना अपनी अकल के ऊपर, ठीक है, ये सबसे पहला फर्ज है। दूसरा फर्ज पांच नमाजें पढ़ना, ठीक है। अब अकल कहती है कि भाई अगर तुम थके हुए हो तो तुम्हारे जिस्म को जो है आराम की जरूरत है, तो सुबह सुबह जो है वो फजर के वक्त उठ करके पानी से वजू करना और उसके बाद फिर जा करके जो है वो नमाज पढ़ना, और अगर मस्जिद करीब है मर्दों के लिए तो फिर मस्जिद जा करके नमाज पढ़ना, ये तो तुम्हारे आराम के अंदर खलल है ये, और तुम्हारे बदन को आराम नहीं मिलेगा तो तुम काम कैसे करोगे, तुम्हारे बदन को आराम नहीं मिलेगा तो तुम यानी फ्रेश कैसे रहोगे, ठीक है। तो अकल कहती है कि फजर की नमाज पढ़ने की कोई तुक ही नहीं बनती जब तुम्हारा बदन थका हुआ है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, नहीं, फजर की नमाज तो कजा नहीं करनी, ये फराइज में से है, तो चाहे तुम थके हुए हो चाहे कुछ भी हो फजर के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फजर के लिए उठना है ना ये हमारे फायदे में है, अकल कहती है कि तुम्हारे नुकसान में है, नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम्हारे फायदे में है। किसकी बात मानोगे, अकल की बात मानोगे कि नबी अलैहिस्सलाम की बात मानोगे, ठीक है। तो अल्लाह के हुक्म पे राजी रहना के अंदर ये चीज भी शामिल है कि जो जो अहकाम अल्लाह ताला ने दिए हैं और हम तक पहुंचे हैं नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से, वो अहकाम तो बेसिकली नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताए हैं वो हमारे फायदे में है, ठीक है। तो इसमें पांच नमाजें भी आ जाती हैं, इसके अंदर जो है वो रमजान मुबारक के रोजे भी आ जाते हैं, जकात भी आ जाती है, हज भी आ जाता है, ठीक है, जब हज फर्ज हो गया तो हज करना हमारे फायदे में है, हज ना करना फिर हमारे फायदे में नहीं है। जब हज फर्ज हो गया, बगैर फर्ज के वो फर्ज नहीं हुआ ना, जब फर्ज हो गया तब फायदे में है। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है वो जाहिर है ख्वातीन की क्लास है तो आपको पता ही है, पर्दा है ना, पर्दे के खिलाफ पूरी दुनिया चीख रही है, पर्दा जो है वो औरत के ऊपर जुल्म है, पर्दा जो है वो औरत को दबा करके रखने वाली चीज है, पर्दा जो है वो औरत की सलाहियतों को उभरने से रोक देता है, पर्दा जो है वो औरत को मफलूज कर देता है, राइट, मुआशरे का हिस्सा नहीं बनने देता, और पर्दा जो है वो मुल्क की तरक्की में रुकावट है, मुल्क की तरक्की में रुकावट है ना, मुल्क की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो कुछ करने के काबिल नहीं रह जाती अगर उसको सही मानों में जो नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा का सिखाया वो पर्दा है, अगर वो वाला पर्दा करवाया जाए ना, तो मुल्क की तरक्की में औरत अपना किरदार बजाहिर अदा नहीं कर सकती। ठीक है ना, पर्दा अगर घर के अंदर किया जाएगा तो घर टूट जाएगा, है ना, घर वालों के दरमियान जो है वो नफरतें पैदा हो जाएंगी, दूरियां पैदा हो जाएंगी, अगर घर के अंदर गैर महरम मर्दों से पर्दा करेगी। कौन कहता है ये सब कुछ? अकल कहती है। अकल क्यों कहती है? क्योंकि नफ्स उससे कहलवाता है। नफ्स क्यों कहलवाता है? क्योंकि शैतान नफ्स को ये आइडिया देता है। ठीक है ना, तो पर्दा जो है वो इंतहाई बुरी चीज, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम, ये हुक्म आ चुका अल्लाह ताला की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, और वो पर्दा ऐसा फर्ज हुआ जिस वक्त हुक्म आया है, तो हजरत जैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा और नबी अलैहिस्सलाम का उसी वक्त निकाह हुआ था, और जैनब रजी अल्लाह तआला जो है वो उसी सहन के अंदर बैठी हुई थी, शर्म की वजह से मुंह दूसरी तरफ करके बैठी हुई थी, और इस तरफ जो है वो सहाबा कराम बैठे हुए थे, बीच में कोई पर्दा नहीं था, बीच में कोई निकाब नहीं था, बीच में कोई चादर नहीं थी। जैसे ही ये हुक्म आया है, नबी अलैहिस्सलाम ने दरमियान में चादर डाल दी, जिसको कहते हैं ना बाकायदा, जिसको कि कर्टन कहते हैं, कर्टन, राइट। तो ये भी नहीं कहा कि तुम निकाब ओढ़ लो, नहीं, बीच में पार्टीशन कर दी। ठीक है ना, उस दिन से पर्दा शुरू हुआ है। तो अकल को फॉलो करना है या नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करना है? नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करने से फायदा होगा, अकल को फॉलो करोगे बजाहिर तुम्हें फायदा नजर आएगा, जैसे फजर की नमाज ना पढ़ने से तुम्हारी थकन शायद उतर जाएगी, फजर की नमाज छोड़ दो, थकन उतर जाएगी, फायदा हो गया ना। लेकिन क्या ये फायदा असल फायदा है? क्या ये दायमी फायदा है? नहीं, ये बहुत मुख्तसर थोड़ी सी देर का फायदा है। उसी तरीके से पर्दा अगर नहीं करोगी तो थोड़ा सा फायदा तुम्हें नजर आएगा, ठीक है, थोड़ा सा फायदा नजर आएगा, जैसे कि रूस वालों को, रशिया वालों को फायदा नजर आया कि हम अपनी औरतों को भी जो है ना वो जब अपने इंडस्ट्री के अंदर काम करवाएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। लेकिन चंद सालों के बाद उनके अपने बड़े इस बात को तस्लीम करने पे मजबूर हो गए कि हमने औरतों को घरों से निकाल करके बहुत बुरा किया, अपने साथ बहुत बुरा किया, हमारा खानदानी निजाम तबाह हो गया है, और हमने थोड़ी सी दुनियावी तरक्की तो हासिल कर ली है, लेकिन इससे हमें ओवरऑल मुआशरे में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, रूस वालों ने तो तस्लीम भी कर लिया, ये बदबख्त याजूज माजूज की जो कौम है ना, ये रूस वाली कौम नहीं है, याजूज माजूज की कौम ये यूरोप और अमेरिका वाले हैं, ये तस्लीम नहीं करेंगे इस बात को कि उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है औरतों को बाहर निकाल कर, ये तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि ये याजूज माजूज वाले लोग हैं, रूस जो है वो उसमें नहीं आता, तो उन्होंने तस्लीम कर लिया। ठीक है, मशरक वाले हैं ना, ये रूस वाले, मशरक का एक अलग किस्म का फितना होता है, मगरब का एक अलग किस्म का फितना होता है, मशरक वाले फिर भी अपनी गलतियों को तस्लीम कर लेते हैं, मगरब वाले नहीं करेंगे। ठीक है, बहरहाल तो अल्लाह के हुक्म के ऊपर राजी रहना। ठीक है, तो इसमें फिर नसीब भी आ जाता है कि जो अल्लाह का फैसला हुआ, तुमने तो जो जायज तरीका इख्तियार करना था ना, यानी काम करने के लिए, तुमने इख्तियार कर लिया, लेकिन अल्लाह का फैसला नहीं था, उसके ऊपर राजी रहो, वो काम नहीं हुआ, अल्लाह के फैसले पर राजी रहो। फिर उसके ऊपर जो है वो हमारे मशाइख माशाल्लाह मजे मजे के वाकयात भी सुनाते हैं, या कुछ जो है वो बड़े इबरत वाले वाकयात सुनाते हैं। तो हमारे हजरत ने एक दफा वाकया सुनाया कि एक साहब जो है ना वो लाहौर से उनको कराची आना था, उनकी बिजनेस मीटिंग थी और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, ठीक है। तो वो जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो किसी वजह से जो है वो फ्लाइट वालों ने कह दिया कि जी आपकी सीट तो वो आपने कंफर्म नहीं करवाई थी, पुराने जमाने में कंफर्म करवाना पड़ता था सीट को, वो तो नहीं करवाई थी, तो वो तो कैंसिल हो गई। अब ये जो है वो लड़ रहा है, गुस्सा हो रहा है, परेशान हो रहा है, दुआएं भी मांग रहा है कि मुझे किसी तरह सीट मिल जाए और मेरी जो है ना वो मीटिंग मिस ना हो जाए कहीं, ठीक है। लेकिन नहीं हो सका, तो बहुत जो है ना वो दिल में दिल खराब करके जो है वो घर वापस लौटा। जब घर पहुंचा तो खबर आई कि ये जो फ्लाइट थी ये क्रैश हो गई और सारे मुसाफिर दुनिया से चले गए। अब अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है, खुश हो रहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी फ्लाइट जो है मेरी क्या सीट कैंसिल हो गई थी, ठीक है। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर तो ये बात उसको नहीं पता थी ना, तो सही तरीका इसके लिए क्या था कि अपनी तरफ से कोशिश जरूर करता लेकिन फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना होता, ठीक है ना, और जो है वो शिकवे शिकायत ना करना शुरू कर देता और बदतमीजी और गुस्सा और ये सारी चीजें ना शुरू कर देता, ठीक है। तो इसको जो है वो सवाब भी मिल जाता, इसको सवाब भी मिल जाता, वो इसने गंवा दिया। लेकिन अल्लाह का फैसला तो जो था वही हो करके रहा, इसने अभी मरना नहीं था तो इसको जो है वो सीट नहीं मिली, ठीक है। लेकिन पहले अगर ये उसूल को याद रखता कि अल्लाह के फैसले पे राजी रहना जो है ना ये अल्लाह ताला चाहते हैं मुझसे, तो इसको आखिरत का भी सवाब मिल जाता। दुनिया की जिंदगी तो उसको मिलनी ही मिलनी थी लेकिन आखिरत का कभी सवाब मिल जाता, ठीक है। तो ये है अल्लाह के हुक्म पे राजी रहना और उसका तरीका। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, हुक्म से मुराद फराइज और वाजिबात जिनको कहा जाता है, ठीक है, यानी करने के कामों को करना और ना करने के कामों को ना करना, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और दूसरी जो कॉन्सेप्ट है नसीब, जो हमारे हिस्से में अल्लाह ताला ने लिखा है, तो उसके ऊपर भी राजी रहना, ठीक है जी। कोई सवाल? सबको समझ में आ गई माशाल्लाह। सवाल के अलावा भी कोई अगर जहन में कमेंट हो या कोई आप ऐड करना चाहती हो तो चैट विंडो के ऊपर उसका ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगला टॉपिक है सिद्क, यानी सच्ची नीयत और उसका तरीका। तो फरमाते हैं कि कोई शख्स दीन का कोई काम करे तो उसमें दुनिया का कोई मफाद ना हो, दुनिया का कोई मफाद ना हो, ना तो दिखलावा हो ना कोई और मतलब हो। दिखलावा का मतलब रियाकारी के लोग खुश होंगे, लोग मेरी तारीफ करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा भी कोई मतलब ना हो। जैसे हजरत खुद इसकी मिसालें लिखते हैं कि किसी के पेट में गिरानी है यानी तकलीफ है किसी के पेट में, तो उसने इस नीयत से रोजा रख लिया कि सवाब भी मिलेगा और पेट भी हल्का हो जाएगा, ठीक है। या नमाज के वक्त पहले से वुजू हो मगर गर्मी की वजह से वुजू दोबारा कर ले कि वुजू भी ताजा हो जाएगा और हाथ पांव भी ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। या किसी साइल को यानी किसी फकीर किसी मांगने वाले को इसलिए दे दे कि उसके सवाल से जान छूटेगी और सदका भी हो जाएगा। ये सब बातें सच्ची नीयत के खिलाफ हैं, ठीक है। जैसे खास तौर पर यानी इंडिया पाकिस्तान में तो ये होता ही था, लेकिन अब तो इवन यानी सऊदी अरब के अंदर भी बहुत ज्यादा, आप जो रियाज में रहने वाले हैं या इवन जद्दा में रहने वाले हैं तो वो जो हारा टाइप की जगह होती हैं, ठीक है, तो आजकल वहां पे बहुत ज्यादा मांगने वाले होते हैं और वो बिल्कुल उसी तरह से पीछे लग जाते हैं जिस तरह से के पाकिस्तान में पीछे लगते हैं। तो अब जो है ना वो उनसे जान छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ उनको देना ही पड़ता है, ठीक है। तो भाई जान छुड़ाने के लिए कुछ दे दिया तो उसमें ये नीयत ना करे कि मुझे सदके सदके का भी सवाब मिलेगा, ये नीयत ना करे कि मुझे सदके का भी सवाब मिलेगा, ठीक है। अगर सदके की नीयत से दे रहा है ना तो फिर जान छुड़ाने की नीयत ना हो, सदके की नीयत हो, ठीक है, कि मैं अल्लाह की रजा के लिए इसको दे रहा हूं, जान छुड़ाने के लिए नहीं दे रहा, ठीक है ना। यहां पर हजरत जिस चीज से मना कर रहे हैं ना वो है कि दोनों नीयतें बराबर बराबर, दोनों नीयतें बराबर बराबर, ठीक है, ये जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, ठीक है, कि जान भी छूट जाएगी और सदका का सवाब भी मिल जाएगा, ठीक है। अलबत्ता ये चीज जायज है कि जान छुड़ाने की नीयत से देना पड़ रहा है क्योंकि वो मुश्किल क्रिएट कर दी है उसने, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है ना, वो पीछे लगा हुआ है, तो जान छुड़ाने की यानी एक तबीयी तकाजा होता है इंसान का, तबीयत के अंदर तकाजा होता है कि बस दो, ताकि काम तो कर सके ना बंदा, राइट। तो इस नीयत से दे रहा है तो अल्लाह ताला से ये उम्मीद कर सकता है, उम्मीद कर सकता है कि अल्लाह ताला इसको सदके में भी शामिल कर ले। उम्मीद करना एक अलग चीज होती है, और ये यानी क्या कहते हैं, ये एज्यूम कर लेना, ये गुमान कर लेना कि नहीं मुझे तो सदके का सवाब मिलेगा क्योंकि मैंने किसी को दिया है, गरीब को जो है वो पैसा दिया है तो मुझे सदके का सवाब मिलेगा, नहीं। उम्मीद करना एक अलग चीज होती है, उम्मीद उस चीज के ऊपर लगाई जाती है कि जिसके लिए, जिसका कि आप अपने आप को डिजर्विंग ना समझते हो, ठीक है ना, यानी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको वो चीज मिलेगी। हाँ, रहम खा करके किसी ने आपको कोई चीज दे दी, उसको कहते हैं उम्मीद लगाना कि शायद रहम खा करके मुझे दे दें, ठीक है। तो अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना ये बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, ये अच्छी बात है अल्लाह ताला से उम्मीद लगाना, ठीक है। लेकिन जहन के अंदर जो है ना वो, यानी इसके लिए एक अलग, समझ लें एक अलग चैम्बर है जहन का, एक अलग हिस्सा है जहन का जिसमें उम्मीद होती है, और तकाजा किसी चीज का ये एक अलग चीज है, ठीक है। इसके लिए समझ लें कि जहन का एक अलग शोबा है जिससे कि ना आप तकाजा करते हैं किसी चीज का, और उम्मीद के लिए एक अलग शोबा है, ठीक है, एक अलग डिपार्टमेंट है उम्मीद का। तो इन दोनों चीजों को जमा नहीं कर सकते, उम्मीद को किसी भी चीज के साथ जमा कर सकते हैं लेकिन तकाजे को जमा नहीं कर सकते, सवाब के तकाजे को, ठीक है। तो हजरत यहाँ पर जमा करने की बात कर रहे हैं जो कि जायज नहीं है। सिद्क नीयत का तरीका यह है कि काम करने से पहले खूब सोच लिया करे कि नीयत में अल्लाह ताला की रजा के अलावा किसी और चीज का शायबा ना हो, सॉरी, अल्लाह ताला की रजा के अलावा किसी और चीज का शायबा हो तो दिल को उससे साफ कर ले, दिल को उससे साफ कर ले। अब हजरत हमें क्या बता रहे हैं, हमें जो है ना हजरत यानी क्या कहते हैं उसको, इंड्यूस करना, इंडक्शन, समझते हैं, यानी अब खवातीन की क्लास है और खवातीन में से अक्सर जो है वो शायद इस प्रोसेस से गुजर भी चुकी होंगी कि जब बेबी बर्थ का टाइम होता है, ठीक है, बेबी की बर्थ का टाइम होता है, तो एक तो तरीका होता है ये आजकल सिजेरियन, ठीक है, तो उसके अंदर तो जी पेट को चाक किया और जो है वो काम हो गया, ठीक है, तो उसमें जो है वो कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस वो एक फिजिकल सर्जरी होती है, ठीक है ना। लेकिन एक होती है नेचुरल बर्थ, ठीक है, नेचुरल बर्थ के अंदर जो है ना वो इंडक्शन करनी पड़ती है, इंड्यूस करना पड़ता है, क्या मतलब कि वो खुद से हो नहीं रहा मामला, ठीक है, तो उसके लिए जो एक्सटर्नली फोर्स करके काम करना पड़ता है ना उसको इंड्यूस करना कहते हैं, ठीक है, यानी कोई अमल जो है वो खुद से शुरू नहीं हो रहा, यू हैव टू फोर्स इट, आपको उसको यानी, ठीक, उम्मीद है कि अब तो समझ में आ ही गया होगा। तो उसी तरीके से ऐसे मामला के अंदर भी जो है ना कि जिनके अंदर नीयत जो है ना वो मिली जुली हो, ठीक है, या ये कि नीयत कोई गलत दिल के अंदर आ रही हो कि मैं इस वजह से ये नेकी वाला काम करूं लेकिन वजह मेरी ये है, तो अब जरूरी नहीं है कि आप उस अमल को जाया होने दें कि भाई अब मैं क्या करूं, अब तो पीछा छुड़ाना की नीयत आ गई है तो अब आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है ना, तो मैं जो ये सदका दे रही हूं ना फकीर को, 2 रुपए हैं, 2 रियाल हैं, 2 डॉलर हैं, तो अब जाया करना, जाया करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, कि मैं इन 2 डॉलरों को जाया कर दूं, क्या मतलब मेरी जेब से निकल के किसी दूसरी की जेब में चले जाएंगे और मुझे सवाब भी कोई नहीं मिलेगा, जाहिर है दुनिया की कोई प्रोडक्ट तो आपको मिल नहीं रही, फकीर आपको कोई टिश्यू पेपर तो बेच नहीं रहा, ठीक है ना। तो वो तो यानी फ्री में वो आपसे पैसा ले रहा है, तो पैसे भी गए, सवाब भी कोई नहीं हाथ आया, तो ये जाया हो गया है ना। और एक अच्छा बिजनेसमैन, जो कि मोमिन सबसे अच्छा बिजनेसमैन होता है या बिजनेस वुमेन होती है, ठीक है ना, सबसे अच्छी तिजारत करने वाला जो है वो मोमिन होता है, जो कि आखिरत के लिए तिजारत करता है और अपने किसी चीज को जाया नहीं होने देता, ठीक है। तो एक अच्छा मोमिन जो है वो अपने $2 को जाया नहीं होने देगा, वो क्या करे फिर, वो इंड्यूस करे, अच्छी नीयत को इंड्यूस करे, ठीक है। और वो हजरत यहां पर आखिरी की दो डेढ़ लाइनों के अंदर ये वाली बात बता रहे हैं कि जरा सोच ले थोड़ी देर के लिए ना, अपनी फिक्र को इस तरफ लगा ले कि ये जो दूसरी चीज मेरे जहन में आ गई है ना, आई विल फोर्स इट आउट, मैं उसको अपने जहन से निकाल करके अल्लाह की रजा की नीयत से ये काम कर रहा हूं। और यकीन करें ये नामुमकिन बात नहीं है, और ये बहुत मुश्किल बात भी नहीं है, ये आसान बात है, ये बहुत आसान बात है एक्चुअली। बजाय लगता है बिल्कुल नामुमकिन है ये, भाई एक नीयत मेरे दिल में बन चुकी है, अब मैं इसको कैसे खत्म कर दूं और जो है वो अच्छी नीयत बना लूं, बजाय नामुमकिन लगता है ये, लेकिन ये फकीर आपको कह रहा है कि नामुमकिन तो दूर की बात, ये बहुत आसान काम है, भला कैसे, ये बहुत आसान काम है, भला कैसे, ये आप अगर बता दें तो दिल खुश हो जाए, ये बहुत आसान काम कैसे है जी। जरा अपने आप को ना तसव्वुर करें कि आप गाड़ी में बैठी हुई हैं और फकीर साहब जो है ना वो खटखटाए चले जा रहे हैं विंडो के ऊपर, सामने भी आ रहे हैं, और यानी एक अजीब मुश्किल पैदा हो गई आपके लिए उस वक्त जो है ना, वो आपके गाड़ी के डैशबोर्ड में कुछ पैसे पड़े हुए थे, आपके दिल में नीयत आई कि यार ये पैसे तो यार क्या, इतने थोड़े से पैसे हैं, मैं जान छुड़ाऊँ इससे ना, चला जाएगा, मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है ना, उस वक्त अल्लाह की रजा की नीयत बनाना कैसे करेंगे, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले दिल में, यही तो बोल रहे हैं कि ये इतना आसान काम कैसे हो गया। थिंक टू योर सेल्फ, दिस कुड हैव बिन मी, अल्लाह ब्लेस मी, माशाल्लाह। ये वैसे आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, अगरचे कि मेरे अपने दिल में ये वाला जवाब नहीं था, लेकिन आपका जवाब अच्छा है तो उसको बुरा तो नहीं ख्याल खामगा कह सकते कि वो मैच नहीं कर रहा। नहीं वैसे ये जो है ना कि थिंक कि इट कुड हैव बीन मी, अल्लाह ब्लेस मी, ठीक है, ये एक बेहतरीन तरीका है यकीनन, ठीक है, कि कोई और अगर चले, एक से ज्यादा जवाब भी तो हो सकते हैं ना, बस तजदीद नियत करता रहे, उसी का मुकल्लफ है। और बताएं, बस तजदीद नियत करता रहे, उसी का मुकल्लफ मुकल्लफ है। चले, आपने आपकी माशाल्लाह सारी बातें ना फतवे से ही रिलेटेड काफी ज्यादा होती हैं, मुकल्लफ है तो ये मुकल्लफ मुकल्लफ भी जाने, ये मुफ्तियों के नजरिए काफी इम्पोर्टेंट बात होती है, तो चले अच्छी बात है, चले फतवा माइंड होना भी कोई बुरी बात नहीं है। और कोई यानी ये भी फिर भी चले, आप दोनों ने जो जवाब दिया ना ये सही तो हैं, लेकिन एक्चुअली ये अच्छे जवाब तो हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही जवाब नहीं है, क्योंकि मैं जो आपसे बात पूछ रहा हूं, ये फकीर जो पूछ रहा है ना वो बात पूछ रहा है कि ऐसी चीज जिससे कि ये बे इंतहा आसान हो जाए, हलवा हो जाए, इसको कहते हैं ना हलवा हो जाना, ठीक है ना, हलवा हो जाना किसी चीज का, ये कैसे, वकूफ कल्बी की मेहनत से दिल बन जाता है और इस तरह नियत बनाना आसान हो जाता है। आपने तो यानी इंतहाई लंबा प्रोसेस जो है ना वो वकूफ कल्बी की मेहनत करें तो उससे दिल बन जाता है, नियत बना अल्लाह के बंदे, ये तो उस वक्त बैठ के आप वकूफ कल्बी की नियत यानी मेहनत करेंगी गाड़ी के अंदर, जब फकीर जो है वो आपकी जान अजाब किया हुआ है वकूफ कल्बी के जरिए, ये तो लॉन्ग टर्म आपने जवाब दे दिया ना, मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखें, वॉट अबाउट यानी एक जो जो अच्छे जवाब थे वो क्या थे कि थिंक टू योर सेल्फ दिस कुड हैव बीन मी, आप ये सोचें कि ये इस फकीर की जगह मैं भी हो सकती थी, अल्लाह ताला ने मुझे ब्लेस किया, ठीक है ना। ये वाली जो आपके जहन में सोच है, इस सोच का महवर कौन है? आप, राइट? इस सोच का महवर कौन है? आप अपने अंदर ही अंदर सोच रही हैं ना कि ये मैं भी तो हो सकती थी, अल्लाह ने मेरे ऊपर एहसान किया तो मैं ऐसी नहीं हूं, तो ये आप अपने बारे में सोच रही हैं, ठीक है ना। तजदीद नियत करता रहे उसी का मुकल्लफ है। तो ये आप जो है वो आपने किताब के अंदर कोई चीज पढ़ी थी, आप वो आपको वो चीज याद आ रही है कि मैं उसका मुकल्लफ, मैं उसी की मुकल्लफ हूं, मेरी इतनी ही जिम्मेदारी है ना। ये किताबी नॉलेज कहलाती है, ठीक है ना। लेकिन वॉट अबाउट जिसके लिए आप ये काम कर रहे हैं, राइट? जिससे आपको सवाब की उम्मीद है, जिसने आपको सवाब देना है, वो किधर गया? जिसने आपको सवाब देना है वो किधर गया? वो कौन है? राइट? अल्लाह। राइट? अल्लाह। अब जरा सोचें, आप अपने दिल के अंदर अल्लाह ताला से अगर ये कहें कि ए अल्लाह, मुश्किल हो रही है, मैं जान छुड़ाने के लिए अपना पैसा देना चाह रही हूं, लेकिन मैं ये चाहती नहीं हूं कि मेरे मेरा ये अमल जाया हो जाए, मैं ये नहीं चाहती कि मेरा अमल जाया हो जाए, ए अल्लाह, अगर आप इसको कबूल कर लें तो क्या हो जाएगा? आपके खजानों में कमी तो नहीं हो जाएगी, मेरा फायदा हो जाएगा, मेरी बिगड़ी बन जाएगी, राइट? मुझे अपनी सोचों के ऊपर काबू नहीं है, मेरी सोचें यही है कि मैं जान छुड़ाऊं, राइट? और मैं इतनी अच्छी नहीं हूं कि मैं नियत आपकी रजा के लिए कर सकूं, नहीं अल्लाह मैं अच्छी नहीं हूं, आप तो अच्छे हैं ना, राइट? तो आप उसको कबूल कर लीजिए, ठीक है? आपका क्या ख्याल है? जब कोई बंदी अपने परवरदिगार से ये जुमला कह देगी तो उसका परवरदिगार उसको रद्द कर देगा, कबूल नहीं करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह इसको कबूल ना करे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्लाह उसको रद्द कर दे, राइट? तो अपने अंदर ही अंदर मेहनतें करने की बजाय अल्लाह से क्यों नहीं बात करते हम, राइट? अल्लाह से क्यों नहीं बात करते, सही? अल्लाह ताला दिलों का हाल नहीं जानता, अल्लाह ताला दिलों की जुबान से वाकिफ नहीं है, सही? तो बस काम खत्म हो गया, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअलाइजेशन की जरूरत नहीं है, कोई इतना ज्यादा आगे पीछे सोचने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह ताला के साथ एक तार जोड़ने की जरूरत थी, बस बस अल्लाह से तार जोड़ा, मामला खत्म हो गया, काम हो गया। इट्स एज सिंपल एज दैट, इतना आसान काम है ये, ठीक है ना। और इसके अंदर 100% गारंटी है कि आपके वो $2 जाया नहीं होंगे, बल्कि आपकी आखिरत का जखीरा बन जाएंगे, 100% गारंटी है, ठीक है। वरना ना अपने सोचों को चेंज करना, इतना ये सब वकूफ़े कल्बी करना और तजदीद नियत करना और ये सोचना कि मैं भी तो हो सकती, ये इनके अंदर बहुत सारी गलतियां हमसे हो सकती हैं, ठीक है। अल्लाह की तरफ से जो भी हो उस पर राजी रहे, तो हालात बदलने के लिए दुआ का क्यों कहा गया, यकीन ये भी दुआ करते रहना कि मुझसे नहीं हो रहा, आप करवा दें। जी बिल्कुल, मुझसे नहीं हो रहा, यानी काम होना तो दूर की बात, मुझसे तो अपनी सोच तब्दील नहीं हो पा रही है, मुझसे तो अपनी सोच तब्दील नहीं हो पा रही कि मैं जान छुड़ाने की जो सोच बन चुकी है ना, अब मैं इससे निकल ही नहीं पा रही, लेकिन अल्लाह आप फिर भी कर लें, अल्लाह आप फिर भी कर लें, ठीक है। तो अमल करना दूर की बात, मुझसे तो यानी जो इनटैंजिबल चीज है ना, मुझसे तो वो इनटैंजिबल चीज भी नहीं हो पाती, टैंजिबल चीज से दूर की बात, ठीक है जी। बहुत आसान काम है, रब को राजी करना इससे ज्यादा आसान काम और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो सिद्क नियत जो है ना, इखलास जिसको कहते हैं, खरा होना अपने परवरदिगार के साथ, ये खरा होना जो है ना, ये लाजिम है, बस ये लाजिम है। इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं है, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। कोई रब के साथ जो है वो खरा ना हो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। और जो रब के साथ खरा हो जाए ना, वो उसका फिर सब कुछ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर जो उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर जो सवाल किया था कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी हो उस पर राजी रहें, तो हालात बदलने के लिए दुआ का क्यों कहा गया है? हालात बदलने के लिए दुआ का क्यों कहा गया है? उसका जवाब अगर कोई और दे दे तो अच्छा होगा, हमने दूसरी क्लास भी शुरू करनी है। क्यों कहा गया है ना, इस जुमले के ऊपर ही जरा गौर करें। किसने कहा है आपको कि हालात बदलने के लिए दुआ करो? किसने कहा? कहा गया है क्या? कोई लाउडस्पीकर से आपको आवाज आ रही थी मोहल्ले में कि जिसकी वजह से आप कह रही हैं कि कहा गया है हालात बदलने के लिए? तो भाई कहा गया है तो ये तो एक मजहूल जुमला हो गया ना, जिसका कि कोई फायल है ही नहीं, जिसको कोई अमल करने वाला है ही नहीं। ऐसी बात को मजहूल कहते हैं, ऐसे अमल को मजहूल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो अमल है ना, ये मजहूल नहीं है, ये पैसिव अमल नहीं है, ये एक एक्टिव अमल है जिसका के फाइल मौजूद है, जिसका के डूअर मौजूद है। ठीक है, तो डूअर कौन है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। ठीक है, कि जब हालात मुश्किल हों, यानी आपके आपके लिए तकलीफ दह हों, तो उसके लिए जो है ना, वो आप सबसे पहले दुआ करें और उनको बदलने के लिए कोशिश भी करें। जिसका फाइल है कौन है? नबी अलैहिस्सलाम है। ठीक है, तो कहा गया, क्यों कहा गया? तो ये तो एक मजहूल, जब आप अंदाज में बात करते हैं ना, मजहूल अंदाज में, तो फिर गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। ठीक है ना, बात के अंदर से जो है ना, वो हकीकत निकल जाती है जब आप मजहूल अंदाज में बात करते हैं। ठीक है, मारूफ अंदाज में बात करें तो ये सुन्नत है। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दुआ करने के लिए नहीं कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने अमल करने के लिए भी कहा है। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो भी हो उस पर राजी रहें, तो ये तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हो गई। ठीक है ना, एक तरफ कह रहे हैं दुआ भी करें और दवा भी करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं राजी रहें। भाई अगर आपको अब यहां तक की बात समझ में आ गई ना, तो इसका जवाब भी आपको मालूम हो गया होगा, सबको ही मालूम हो गया होगा। उम्मीद है कि सबको इसका जवाब समझ में आ गया होगा। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये हुआ कि आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना, इन अल्फाज की वजह से आप कंफ्यूज थे, क्योंकि आपने मजहूल अल्फाज इस्तेमाल किए थे। बात समझ में आ रही है? आपके अल्फाज की गलती थी, आपने मजहूल अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इस फकीर ने सिर्फ ये किया है कि मजहूल को मारूफ बना दिया। ठीक है ना, मजहूल को मारूफ यानी पैसिव टेंस को एक्टिव टेंस बना दिया है और आपको फाइल का बता दिया है। अब बताएं, कुछ पिक्चर क्लियर हुई आपके दिमाग आपके जहन में कि ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है और करके भी दिखाया है कि दुआ भी करो और दवा भी करो। ठीक है, तो अब क्या मतलब हुआ कि अल्लाह की तरफ से जो भी हो उस पर राजी रहे? अब तो वो मतलब हो गया जो कि हम मुस्तकिल पिछली क्लास में भी बात हुई थी, उससे पिछली क्लास में बात हुई थी, और हर वक्त ही बात होती रहती है। तो भाई क्या इसका जवाब है? बहुत ही आसान सा जवाब है इस पर, है ना। जब आपने दुआ भी कर ली मुश्किल हालात को बदलने की, फिर उसके बाद आपने दवा भी कर ली मुश्किल हालात को बदलने की, फिर क्या हुआ? थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि नतीजा अल्लाह के हाथ में है, अब उसके ऊपर फ्रस्ट्रेट ना हो कि अल्लाह ने मेरी मर्जी के मुताबिक नतीजा क्यों नहीं दिया, मेरी मर्जी क्यों नहीं पूरी हुई। मर्जी तो अल्लाह की पूरी होनी है ना। ठीक है, तो ये है बस हकीकत इस दुनिया की जिंदगी की, ये है। ठीक है ना, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है वो करो, क्योंकि वो अल्लाह ही की रजा है जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताई है। अल्लाह चाहते हैं कि करो, दुआ भी और दवा भी, लेकिन नतीजा जो है वो अपने हाथ में मत समझना। और ये मत समझना कि दुनिया तुम्हारे मर्जी से चलने वाली है, दुनिया मेरी मर्जी से चलने वाली है। तुम्हारा बच्चा जो है वो बीमार है, कोई तकलीफ है तुम्हें, या किसी और का कोई मसला है, तुम उसके लिए दुआ भी करो, तुम उसके लिए दवा भी करो, लेकिन अगर वो बीमारी दूर नहीं होती तो मेरी रजा के ऊपर राजी रहो। ये दुनिया मेरी मर्जी से चलनी है, तुम्हारा बच्चा मेरा बंदा है, तुम्हारा बंदा नहीं है, तुम्हारा सिर्फ बच्चा है, तुम्हारे वास्ते से मैंने इसको इस दुनिया में भेजा है, तुमने नहीं इस दुनिया में उसको पैदा किया है, तुमने पैदा नहीं किया है, तुम इसकी मालिकाना नहीं हो, तुम उसकी खालिका नहीं हो, तुम उसकी राजिका नहीं हो, मैं ही उसका राजिक हूं, मैं ही उसका खालिक हूं, मैं ही उसका मालिक हूं, मेरे पास ही इसने लौट करके आना है जिस तरह तुमने लौट करके आना है। ठीक है, तो मी माई सेल्फ एंड आई, ये अल्लाह को सजता है, ये अल्लाह को सजता है, ये अल्लाह के लिए बुराई नहीं है, ये हमारे लिए बुराई है कि जब हम मी माई सेल्फ एंड आई की बात करते हैं, अल्लाह के लिए बुराई नहीं है, अल्लाह तो इस काबिल हैं, अल्लाह ताला तो डिजर्व करते हैं, मी माई सेल्फ एंड आई, मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी, हम डिजर्व नहीं करते ये बात सोचना या ये बात कहना कि मेरी चलेगी तुम्हारी नहीं चलेगी। ठीक है जी, तो इतनी सी बात है, अल्लाह ताला हमें इसको समझने की और इसके मुताबिक अपने जिंदगियों को ढालने की तौफीक अता फरमाए, मुश्किलात से आजमाइशों से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं, हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते, आसानी फरमाए सबके लिए। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाली क्लास रोकते हैं और 1-2 मिनट के गैप, चंद मिनटों के गैप से अपना मिसाली बहुत